पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र और रूही के बीच झगड़ा होता है। रूही खाना बनाती है और रुद्र उसे गिफ्ट देता है। बाद में दोनों में फिर झगड़ा होता है और रूही रोती है। इस अध्याय में रूही सुबह रुद्र के कपड़े पहनने से इनकार करती है और कॉलेज जाती है। वहाँ वो जय चड्ढा से भिड़ जाती है जो एक छात्र को पीट रहा था। जय रूही को अपमानित करता है। परी रूही के साथ है। दूसरी तरफ दिशा देवांश के साथ इंदौर जाने के लिए सहमत होती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 89। अब आगे मॉल में परी रूही को ज़बरदस्ती कॉलेज से मॉल लेकर आती हैं और उसे एक अच्छा मगर सिंपल सा सूट देकर उसे चेंजिंग रूम में भेज देती है। फिर खुद भी अपने लिए ड्रेस लेने लगती है क्योंकि उसे तो बस मौका चाहिए शॉपिंग करने का। वहीं रूही अपने कपड़े बगल परी के पास जाकर कहती है, अब चल हम घर चलते हैं। रूही की बात सुनकर परी बोली, अरे जब हम मॉल आ ही गए हैं तो चल मूवी देख लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गया, हमने साथ में मूवी नहीं देखी। परी की बात सुनकर रूही बोली, नहीं परी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तू घर चल। रूही की बात सुनकर परी बोली, तेरा मूड बेकार है इसीलिए तो तुझे मूवी देखने को बोल रही हूँ, जिसके तेरा मूड सही हो जाए। अब चल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। इतना बोल वे रूही का हाथ पकड़ मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर मूवी देखने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी मॉल के ऊपर वाले फ्लोर के प्राइवेट एरिया में एक बड़े के मीटिंग रूम में काफी ज्यादा खामोशी थी। वहां पर बैठे बिजनेसमैन अपनी सांस भी काफी धीरे धीरे ले रहे थे, वरना उन्हें डर था कि सामने बैठा शैतान उनकी सांस लेने पर भी उन्हें कोई सजा न दे दे। वहीं उस मीटिंग रूम के किंग साइड चेयर पर किसी राजा की तरह कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही बैठा हुआ था और अपनी नीली गहरी आंखों से उन सभी को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, प्रेजेंटेशन देना शुरू करो और ये तुम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है। अगर इस बार भी तुम लोगों में से मुझे किसी की प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई तो आगे से मेरे सामने कभी मत आना। रुद्र की बात सुनकर सब डर जाते हैं मगर फिर भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं क्योंकि ये उनके लिए काफी बड़ा मौका था। अगर एक बार रुद्र को उनकी प्रेजेंटेशन पसंद आ गई तो उनकी कंपनी सीधे टॉप पर आ जाएगी और उन्हें करोड़ों का फायदा होगा। इसलिए उनमें से सभी बिजनेसमैन एक एक कर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। धीरे धीरे सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके थे। अब वे सारे शांति से अपनी अपनी चेयर पर बैठ अपने चेहरे पर डर लिए रुद्र को देख रहे थे और मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी प्रेजेंटेशन रुद्र को पसंद आ जाए। वहीं अमन जो रुद्र के पीछे ही खड़ा था, वे सभी के डरे हुए चेहरे को देख मन में ही बोला, ये मेरे शैतान बॉस ने सभी को कितना डरा कर रखा हुआ है, सब देखो डर की वजह से सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इतना बोल वे अपना सर ना में हिला देता है। वहीं रुद्र उन सभी को देख गुस्से में बोला, तुम सभी के प्रेजेंटेशन में ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं था जो मुझे पसंद आए। अगर मैं तुम लोगों के इस बेकार प्रेजेंटेशन में पैसा लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट होने की जगह मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। इतना बोल रुद्र गुस्से में वहां से उठ जाने लगता है क्योंकि इन सब की वजह से उसका पहले ही उतना टाइम बर्बाद हो गया था। अब वे अपना और टाइम इन सब में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहीं रुद्र को जाता देख एक बिजनेसमैन हिम्मत करके हुए बोला, सर हमने इतनी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाई है और हमने अपनी पूरी जान लगा दी है लेकिन फिर भी आपको हमारी प्रेजेंटेशन बेकार और यूजलेस लग रही है। कम के कम आप हमें ये तो बता दीजिए कि हमारी प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या कमी रह गई कि आप हमारी प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। उस बिजनेसमैन की बात सुनकर रुद्र के बाहर जाते कदम अपने आप रुक जाते हैं और उसका ओरा भी डार्क हो जाता है। वे उस बिजनेसमैन की तरफ पलट उसे अपनी नीली आंखों के देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, रुद्र सिंघानिया का एक एक मिनट बहुत कीमती है और तुम चाहते हो कि मैं बच्चों की तरह यहां बैठकर तुम्हारी गलतियां बताऊं, तो एक काम करो, बिजनेस छोड़कर जाकर कोचिंग ज्वाइन कर लो। पहले वहां पर अच्छे से सीख लेना तब बिजनेस करना। वैसे भी कल के बाद से तुम्हें उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कल के बाद वैसे भी तुम बहुत पछताने वाले हो कि आखिर तुमने अपनी ये जबान रुद्र सिंघानिया के सामने खोली तो खोली क्यों। इतना बोल वे अपनी खतरनाक नजरों से सभी को देख निकल जाता है। वहीं अमन भी रुद्र को जाता हुआ देख उसके पीछे चला जाता है। वहीं बाकी बिजनेसमैन रुद्र की बात सुनकर समझ जाते हैं कि रुद्र जरूर उस बिजनेसमैन के साथ कुछ करने वाला है, जिसके वे सभी बिजनेसमैन उस बिजनेसमैन को तरस भरी नजरों से देखने लगते हैं जिसने अभी अभी रुद्र के सामने अपनी जबान खोली थी। साथ ही साथ ये शुक्र भी मना रहे थे कि गुस्से में आकर उन सबने रुद्र के सामने अपना मुंह नहीं खोला, वरना उन लोगों को भी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये सोच वे सब एक एक कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं वे बिजनेसमैन जिसने अभी अभी रुद्र के सामने अपनी जबान खोली थी, रुद्र के इस तरह धमकी देने से उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप को हौसला दे कि वे जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। ये सोच वे भी मीटिंग रूम से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ परी और रूही दोनों मूवी देखने के बाद हंसते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकलती हैं और कुछ खाने के लिए फूड एरिया की तरफ जाने लगती हैं। परी ने रूही को जो फिल्म दिखाया था वे फिल्म काफी ज्यादा कॉमेडी वाला था, जिसे देख रूही का सारा मूड ठीक हो गया था और वे कॉलेज की सारी बातों को भूल गई थी और मूवी के बारे में परी से बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वे परी की बात करने में इतनी ज्यादा बिजी थी, उसे सामने से आता हुआ रुद्र भी दिखाई नहीं दिया और वे जाकर सीधा रुद्र के सीने से टकरा जाती है। वहीं रुद्र के सीने से टकराते ही रूही बिना अपने सामने देखे अपने सिर को सहलाते हुए गुस्से में परी से बोली, अरे यार परी, ये रास्ते में दीवार कौन बनवाता है, देखना मुझे चोट लग गई। इतना बोल वे अपने सर को सहलाने लगती है क्योंकि उसे सच में काफी तेज से लगी थी। वहीं परी रूही की बात सुनकर जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वैसे ही उसकी नजर अपने सामने खड़े रुद्र पर पड़ती है, जिसके उसकी आवाज उसके गले में ही रह जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब रूही को जो सजा मिलेगी वे तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उसे भी सजा मिलने वाली है। क्योंकि रुद्र को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि वे अपने कॉलेज टाइम में कहीं बाहर घूमे। क्लास के बाद वे कहीं भी जा सकती थी मगर क्लास के बीच में कहीं भी बाहर जाने की उसे भी परमिशन नहीं थी।
वहीं रूही जब परी की कोई आवाज नहीं सुनती तो वे अपने सर से हाथ हटा जैसे ही परी से कुछ बोलने वाली होती है अपने सामने रुद्र को देख उसकी आवाज भी उसके गले में ही रह जाती है और उसके चेहरे पर भी डर नजर आने लगता है।